ओम अज्ञानिति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयहं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताविने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अध्याय 11 विराट रूप विश्व रूप या विराट रूप जो अध्याय है इसको हम डिस्कस करेंगे। 10वें अध्याय के लास्ट में भगवान ने बताया था कि अपने केवल एक अंश से वो पूरे संसार का पालन करते हैं, पूरे भौतिक और आध्यात्मिक संसार को केवल अपने एक अंश के से धारण करते हैं। और उसके पहले भगवान ने बताया था कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। तो अर्जुन ने अभी तक जो सुना 10वें अध्याय में, अर्जुन उन विभूतियों को देखना चाहते थे, तो भगवान के विश्व रूप या विराट रूप का दर्शन करना चाहते थे, जिससे वो देख सकें कि भगवान के रूप के अंदर किस प्रकार से पूरा संसार है और सारे ऋषि मुनि सभी लोग सारे जीव उसके अंदर हैं। तो अर्जुन को भगवान की विभूतियाँ जानने के बाद भगवान का विराट रूप देखने की भी इच्छा हुई, इसलिए अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान का विराट रूप आप मुझे दिखाइए। तो अर्जुन प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि 10वें अध्याय में ही हमने देखा था जब अर्जुन ने बोला था कि आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, सभी ऋषि मुनि आपके बारे में बताते हैं और परम आश्रय हैं, इस तरह से भगवान बता रहे थे अर्जुन को, अर्जुन भगवान को बता रहे थे। तो अर्जुन ने भगवान को समर्पण कर लिया है और भगवान से अभी प्रश्न कर रहे हैं भगवत विज्ञान के बारे में। तो नेचुरली अर्जुन इसमें पूछते हैं कि आपने मुझे जिन आध्यात्मिक विषयों को बताया है उससे उनको सुनकर अभी मेरा मोह दूर हो गया है। यस त्वयोक्तम वचस्ते न मोहोयम विगतो मम, मेरा जो मोह था जो गीता सुनने के पहले, वो मोह मेरा अभी दूर हो चुका है, इस तरह से अर्जुन बता रहे हैं। अर्जुन का मतलब है कि कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अभी वो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझ गए हैं। पहले वो कृष्ण को मित्र के समान मानते थे, परंतु अभी गुरु मान के वो भगवान मान के उनको समर्पण कर चुके हैं और भगवान से आध्यात्मिक ज्ञान की उन्होंने शिक्षा ली है और उसको सुन के उनका मोह दूर हो गया है और जो भी उनके शंकाएँ थी वो शंकाएँ भी खत्म हो गई हैं भगवान की शिक्षा के द्वारा, आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा। और जैसे कि भगवान ने 10वें अध्याय में बताया अर्जुन को कि सारे जीवों की उत्पत्ति और प्रलय मेरे द्वारा होता है, मुझ में ही सभी समा जाते हैं, तो अर्जुन उसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैंने आपकी महिमा का वर्णन किया है। और भगवान ने एक जगह भी बताया था, अहम कृत्स्नस्य जगत प्रभव प्रलयस्थ था, मैं ही पूरी जगत के प्रभव मतलब संसार में आने का कारण हूँ और प्रलय का भी मैं ही कारण हूँ। और इतना रहने के बाद भी भगवान पृथक होते हैं, भगवान ने बताया था मैं डिटैच हूँ, स्वतंत्र हूँ। तो सब कुछ भगवान में है, परंतु भगवान सब कुछ में नहीं है, क्योंकि भगवान अपने पूर्ण रूप भगवान अपनी एनर्जी के रूप में हर जगह हैं, परंतु अपने वास्तविक रूप में भगवान अपने धाम में भी विराजमान रहते हैं। तो इस प्रकार से ये अर्जुन भगवान का महिमा मंडन कर रहा है। और उसके बाद अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि इस प्रकार आपने जो कहा है और आपने जो अपनी एनर्जी या शक्तियों के बारे में कहा है, द्रष्टुम इच्छामि, मैं आपके इस रूप को देखना चाहता हूँ जो आपने वर्णित किया है पिछले कुछ समय पहले 10वें अध्याय में आपने जो वर्णित किया है उस रूप को मैं द्रष्टुम इच्छामि, उस विराट रूप को मैं दर्शन करना चाहता हूँ। अर्जुन तो वास्तविकता में भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अर्जुन ये प्रश्न हमारे लिए कर रहे हैं जिससे कि भविष्य में लोगों को विश्वास हो कि कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, क्योंकि सामान्य मनुष्य इस तरह से सोच सकते हैं कि कृष्ण तो सामान्य मनुष्य हैं। तो अर्जुन इसीलिए बता रहे हैं कि कृष्ण सामान्य मनुष्य नहीं है, विराट रूप अगर दिखाएंगे तो लोगों को विश्वास होगा कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए अर्जुन कलयुग में आने वाले जो श्रद्धाविहीन लोग हैं उनको प्रूफ करने के लिए भगवान से ये प्रश्न करते हैं कि वो उनका विराट रूप देखना चाहते हैं। यद्यपि अर्जुन की इसकी कोई, अर्जुन को भगवान के भगवत्ता को प्रूफ करने के लिए कोई विराट रूप को देखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अर्जुन ऑलरेडी शुद्ध भक्त हैं। और कृष्ण भी ये जानते थे कि अर्जुन एक आदर्श स्थापित करने के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि भविष्य में ऐसे कई मूर्ख होंगे और चालाक लोग होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बोलेंगे। तो अगर कोई ईश्वर का अवतार अपने आप को बोलता है तो उससे बोलना चाहिए कि आप विराट रूप दिखाइए, क्योंकि कृष्ण ईश्वर थे तो उन्होंने विराट रूप दिखाया था। अगर आप अपने आप को ईश्वर बोलते हो तो आपको विराट रूप दिखाना चाहिए। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाना होगा। तो आप लोग भी पूछ सकते हैं, कोई अगर व्यक्ति बोलता है कि मैं कृष्ण हूं तो उसे पूछ सकते हैं कि आपका विश्व रूप कहाँ है, दिखाइए, तब हम मानेंगे। और अर्जुन साथ में डिमांड नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मन्यते यदि तत्शक्यम, हे भगवान अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो आप मुझे अपने विश्व रूप का दर्शन दिलाइए। इस प्रकार से अर्जुन बोल रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे हैं कि मुझे ये दिखाओ, बोले भगवान अगर आपको लगता है कि मैं उसको देखने में समर्थ हूँ तब आप मुझे अपने विश्व रूप का दर्शन कराइए, कृपा करके मुझे अपने विश्व रूप को दिखलाइए। इस प्रकार से अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और भगवान इसके बाद बताते हैं कि भगवान मान जाते हैं कि कैस किस प्रकार से उनका विश्व रूप है, और अर्जुन से बोलते हैं कि अभी तुम इस विश्व रूप को देखो। हे अर्जुन, तुम मेरे इस ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। भगवान अपने विश्व रूप को दिखाने के पहले अर्जुन को उद्बोधित कर रहे हैं कि तुम इस रूप को अभी दर्शन करो। इस रूप को भगवान का विराट रूप, यद्यपि भगवान का वास्तविक रूप तो उनका आध्यात्मिक स्वरूप है, द्विभुज रूप है और चतुर्भुज रूप है, जो कि उनका आध्यात्मिक स्वरूप है। विराट रूप भगवान का इस संसार में जो भौतिक तत्वों से बना हुआ, भौतिक तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए जो रूप है उसको विराट रूप बोलते हैं। तो सामान्यतः भक्त लोग भगवान के आध्यात्मिक रूप की पूजा करते हैं, परंतु जो लोग आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं उनके लिए विराट रूप भगवान दिखा रहे हैं। तो कृष्ण बताते हैं अर्जुन से कि इस प्रकार के मेरे रूप का दर्शन करो, इसको इस रूप के अंदर तुम सभी देवताओं को भी देखोगे, रुद्र मतलब शंकर, अश्विनी कुमार, वसु, आदित्य, इन सभी के रूपों को तुम मेरे इस विराट रूप के अंदर देखोगे। इसके अलावा तुम ऐसे कई लोगों को देखोगे जिनको तुमने कभी दर्शन नहीं किया है। तो भगवान इस तरह से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं विराट रूप क्या कहलाता है और कैसे तुम उसको देख सकते हो, कैसे तुम उससे लाभान्वित हो सकते हो, और तुम जो भी देखना चाहते हो वो इस शरीर में तुम्हें दिखेगा, जो पास्ट में हो चुका, अभी है और भविष्य में जो होगा वो सब कुछ तुम्हें इस शरीर के अंदर दिखेगा, क्योंकि इस पूरे संसार का चर अचर सब कुछ इसके अंदर उपयुक्त है। परंतु एक समस्या है, हे अर्जुन, तुम इस रूप को अपनी आंखों से, इस आंखों से नहीं देख सकते हो, क्योंकि विराट रूप एक दिव्य स्वरूप है। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें इस सामान्य आंखों से, चक्षुओं से देखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें ऐसे चक्षु दूंगा जिससे कि तुम मेरे विराट रूप को देख सकते हो। तो एक बार एक व्यक्ति से इसी तरह से जब प्रश्न किया कि अगर आप अपने आप को कृष्ण बोलते हो तो आप अपना विराट रूप दिखाइए, तो उस व्यक्ति ने बोला, पर तुम्हारे पास तो आंखें नहीं है विराट रूप देखने की, दिव्य चक्षु नहीं है। तो उससे प्रश्न पूछा कि दिव्य चक्षु भी तो भगवान ने अर्जुन को दिया था, तो आप ही हमें दिव्य चक्षु दीजिए और दिव्य चक्षु दे के फिर भगवान का रूप दिखाइए। तब वो व्यक्ति कोई जवाब नहीं दे पाया। तो कोई व्यक्ति अगर हमें आप लोग अगर कोई व्यक्ति आगे आपसे बोलता है कि मैं भगवान हूँ, तो उससे आप बताइए कि मुझे दिव्य चक्षु दीजिए और अपना विराट रूप दिखाइए, तब मैं मानूंगा कि आप भगवान हैं। अगर नहीं दिखा पा रहे तो अपने आप को भगवान मत बोलिए। इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान ने उन्हीं लोगों को जवाब देने के लिए विश्व रूप दिखा रहे हैं। इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या दास्यं गताना परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन साकं विजह्हु कृतपुण्यपुञ्ज। इस श्लोक में आ रहा है, ये वो परम पुरुष हैं जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में अनेक पुण्य किए हैं उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। तो भगवान कृष्ण जो कि परम पुरुष हैं, उनके साथ उनके जो मित्र जो हैं वो उनके साथ खेल रहे हैं, और ये मित्रों का उनके साथ खेलना बहुत आश्चर्यजनक घटना है, क्योंकि भगवान के साथ भगवान के मित्र के जैसे बनना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। दुनिया के बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो सामान्य जन उनको कैसे सोच सकते हैं। दैट मीन्स इस प्रकार से लिखा है कि ये लोग जो भगवान के मित्र रूप में हैं ये सब बहुत महान लोग हैं, कृत पुण्य पुंज, बहुत सारे पुण्यों को कर चुके हैं। इसके बाद इस श्लोक से, नौवें श्लोक से लेके ऑलमोस्ट 25, नौवें श्लोक से लेके अगले 20, 22, 23 श्लोकों तक, 31 नंबर श्लोक तक भगवान का विश्वरूप का बड़ा डिटेल वर्णन है, और भगवान ने विश्वरूप दिखाना चालू किया, महायोगेश्वर भगवान ने अपने विश्वरूप को दिखाया। इस विश्वरूप में क्या क्या अर्जुन देख रहे हैं, अनेक वक्त्रम, बहुत सारे मुख हैं, अनेक नयनम, बहुत सारे नेत्र हैं, अनेक अद्भुत दर्शनम, बहुत सारे आश्चर्यजनक दृश्य हैं, अनेक दिव्याभरणम, दिव्य आभरणम मतलब बहुत सारे दिव्य आभूषण ये पहने हुए हैं, अनेको द्यातयुधम, अनेक आयुधम मतलब होता है शस्त्र, अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, दिव्य माल्याम वरधरम, देवी मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए हैं, और उस पे अनेक सुगंध, दिव्य सुगंध लगी हुई है। ये सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम और सर्वत्र फैला हुआ है। इस प्रकार से रूप का वर्णन है, चारों पूरे आकाश में दिव्य दिव्य रूप फैला हुआ है। वो अर्जुन चारों तरफ देख रहे हैं कि अनेक अनेक आँखें हैं, अनेक मुख हैं, बहुत सारे आभूषण पहने हैं, बहुत सारे हथियार हैं, सब कुछ भगवान के पास है, और ये स्वरूप जो है ये सामान्य नहीं है, ये स्वरूप हजारों सूरज की रोशनी के समान है। एक सूरज की रोशनी को हम देखें कितना कठिन होता है देखना, दोपहर में जब हम सूरज को देखें तो देख नहीं सकते। इसमें लिखा है कि असंख्य सूर्य, सहस्त्र सूर्य के जैसा भगवान का तेज है। जब आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तब उनका जो प्रकाश है वो शायद भगवान के इस तेज की समता कर सके। इस प्रकार से इसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है, और जब अर्जुन ने ये रूप देखा तो अर्जुन को भगवान की भगवत्ता के बारे में और डिटेल में पता चला। एक तरह से विराट रूप देखने से व्यक्ति की भगवत भक्ति इसीलिए बढ़ती भी है, क्योंकि जब वो भगवान के ऐश्वर्य को इतना तेजी से देखता है, इतने बड़े रूप में देखता है, तो व्यक्ति अपने आप भगवान को समर्पित हो जाता है। तो अर्जुन ने जब विराट रूप को देखा, विस्मयाविष्टो, आश्चर्यचकित हुए और मोहग्रस्त और आश्चर्यचकित होकर अर्जुन ने भगवान को प्रणम्य, प्रणम्य का मतलब होता है सिर झुकाया, और फिर कृतांजलि, दोनों हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हैं। नेचुरली जब कोई भक्त भगवान के इस रूप को देखता है तो भक्त समर्पण कर देता है, और समर्पण के बाद भक्त के हृदय से प्रार्थनाएं निकलती हैं। तो अर्जुन अभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं 15वें श्लोक से, पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम विशिंस सर्गानुरगाश्च दिव्यान। अर्जुन बता रहे हैं, पश्यामि देवांस्तव देव देहे, आपके देह में हम मैं सारे देवी देवताओं को देख रहा हूँ, सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान, सारे जीव भी उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मांडमीशम, कमल पे बैठे हुए ब्रह्मा भी दिखाई दे रहे हैं, और शिव जी भी दिखाई दे रहे हैं, और ऋषिमश्च सर्वानुरगाश्च दिव्याम, बहुत सारे ऋषि मुनि, दिव्य सर्प वासुकी, अनंत शेष, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, स्वर्ग, स्वर्गलोक में सभी को दिव्य रूप के अंदर अर्जुन दर्शन कर पा रहे हैं। इस दिव्य रूप के अनेक बाहु, दर, वक्त, नेत्रम, बहुत सारे भुजाएं हैं, बहुत सारे हाथ हैं, पेट हैं, मुख हैं, आंखें हैं,
और जो पूरे आकाश में फैले हैं। प्रैक्टिकली अर्जुन अपने चारों तरफ विराट रूप देख रहा था, क्योंकि विराट रूप पूरी धरती में व्याप्त है। तो अर्जुन अपने चारों तरफ भगवान के विराट रूप को देख रहे हैं। अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें अर्जुन को दिखाई दे रहे हैं, और उनका कोई आदि या अंत नहीं है। इस तरह से अर्जुन बोल रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ चालू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, इतना ज्यादा विराट रूप है। प्रैक्टिकली अर्जुन पूरी तरफ से विराट रूप से ढके जा चुके हैं। आपके इस रूप में इतने ज्यादा चकाचौंध है कि इसको देख पाना कठिन है। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि ये प्रज्वलित अग्नि की भांति और सूर्य के प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो अर्जुन बता रहे हैं कि इस रूप को देखना बहुत कठिन है, क्योंकि ये लगातार फैल रहा है, चारों तरफ फैल रहा है, चारों दिशाओं में फैल रहा है, तो इसको देखना बहुत कठिन है। मैं इस तेजोमय रूप को सभी जगह देख रहा हूँ, जो आपकी मुकुट, गदा और चक्रों से विभूषित है। इस प्रकार से अर्जुन डिस्क्राइब कर रहे हैं विश्व रूप को, कि इस रूप का ना तो आदि है, ना अंत है, और ना तो मध्य है। अनादिम अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, ना तो आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। अनंत बाहु अनंत वीर्य, इसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। अनंत बाहु, बहुत सारी भुजाएं हैं, बहुत सारे सूर्य और चंद्रमा भी आपके रूप के अंदर दिखाई दे रहे हैं। सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं, वास्तविकता में भगवान की आंखें शशि और सूर्य होते हैं। और अर्जुन ये एक भयानक रूप भी देख रहे हैं कि भगवान के मुख से अग्नि निकल रही है, और उस अग्नि से पूरे ब्रह्मांड जल रहा है। काल रूप की जो अग्नि है, वो पूरे ब्रह्मांड को जला रही है, उनके भगवान के दिव्य मुख से निकल रही है। शास्त्रों के अनुसार भगवान की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। मोहग्रस्त होने के बाद या परम आह्लाद के समय आश्चर्यजनक होने पर पुनरावृत्ति होती है। तो अर्जुन के वचन सुनकर कई बार ऐसा लग रहा है कि अर्जुन एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं। तो इसको समझाया गया है कि कई बार भगवान की जब ग्लोरिफिकेशन होता है, तो उसमें पुनरावृत्ति, बार बार सेम चीज़ बोलना दोष नहीं माना जाता है। क्योंकि व्यक्ति जब भगवान के प्रेम में डूब जाता है, तो आश्चर्य के कारण वो कुछ चीज़ें बार बार बोल सकता है, तो वो सामान्य है, वो उसके प्रेम का सूचक है। आगे अर्जुन बता रहे हैं कि द्यावा पृथिव्यो वेदमंतरम ही, आपका यह रूप जो है, ये पृथ्वी पे भी व्याप्त है, आकाश में भी व्याप्त है, पृथ्वी आकाश के बीच में जो जगह है वहाँ भी व्याप्त है, हर जगह आपका यह रूप व्याप्त है। व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वः, हर दिशाओं में, चारों दिशाओं में आपका ये रूप व्याप्त है। दृष्ट्वाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम, आपका ये अद्भुत रूप बहुत अद्भुत है और भयानक भी है, क्योंकि इसको देख के संसार के सारे लोग भयभीत हैं। भगवान का इतना बड़ा रूप है, आंखों से अग्नि, मुंह से अग्नि निकल रही है, चारों तरफ तो ब्रह्मांड जल रहा है, तो इस रूप को देख के कई लोग डर रहे हैं। अर्जुन इस तरह से बता रहे हैं कि सारे लोक भयभीत हैं। लोक मतलब तीनों संसार, भूलोक, भुवन लोक, स्वर्ग लोक, सभी सब भयभीत हैं भगवान के इस रूप को देख के। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न नहीं था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। इसके बाद अगले श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं कि सुर संगा विसंति, सुर संग मतलब देवताओं का जो समूह है, सारे के सारे देवता एक साथ आ रहे हैं और आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपकी शरण में आ रहे हैं। केचित भीता प्रांजलयो गणंती, कुछ लोग आपसे डर के आपको प्रणाम करके सिर झुका रहे हैं। देवता आपके सामने आ रहे हैं, शरण ले रहे हैं, आपको सिर झुका रहे हैं, आपके सामने प्रणाम कर रहे हैं। और महर्षि, बहुत बड़े बड़े महर्षि, सिद्ध लोक के जन और ये सभी तपस्वी, ये सभी आके स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। स्वस्ति वाचन मतलब भगवान का कल्याण हो, इस तरीके से भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उसको स्वस्ति वाचन बोलते हैं। जैसे पुरुष सूक्त की प्रार्थनाएं हैं, अलग अलग वेद प्रार्थनाएं हैं, तो ये सारे महर्षि लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं इन प्रार्थनाओं के द्वारा, वैदिक स्तोत्रों का पाठ कर रहे हैं। इसके बाद ये आगे अर्जुन बताते हैं कि रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेस्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। भगवान शंकर के बहुत सारे रूप हैं, 11 11 रुद्र पाए जाते हैं शंकर के बहुत सारे रूप। आदित्यगण, वसुगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्धदेव, ये सभी आपको आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक रूप से देख रहे हैं। इन सब देवताओं का वर्णन 10वें अध्याय में भी आया था, तब हमने इनका कुछ कुछ हिस्ट्री देखा था, वसुओं का और मरुदगण का। तो ये सभी भगवान के दिव्य रूप में दिखाई दे रहे हैं, और भगवान के इस रूप को देवता लोग देख रहे हैं, और देवता लोग बहुत भयभीत भी हो रहे हैं। महत्ते बहुभक्तृनेत्रम, जब वो देख रहे हैं कि आपके बहुत सारी आँखें हैं, बहुत सारी भुजाएं हैं, बहुत सारे मुंह हैं, और महाबाहु, उनकी भुजाएं बहुत शक्तिशाली लग रही हैं, और बहुत सारी जांघ हैं, पैर, बहुत सारे पेट, बहुत सारे दांत, ये सब बहुत भयानक दिख रहे हैं। इसको देख के लोका प्रव्यथितास्तथा तथा हम, मैं भी, सभी देवता भी भयभीत हैं तथा अहम, मैं भी भयभीत हूँ। अर्जुन शुद्ध भक्त हैं, इसलिए विराट रूप देख के अर्जुन मोहित नहीं होते हैं, क्योंकि अर्जुन एक्चुअली वास्तविकता में कृष्ण का द्विभुज रूप, दो भुजाओं के रूप से ज़्यादा आकर्षित हैं। तो अर्जुन बताते हैं कि सारे देवता डर रहे हैं, साथ साथ मैं भी डर रहा हूँ, क्योंकि नभस्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम व्याप्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपके आकाश का स्पर्श करते हुए, नभस्पृशम, सम भगवान का जो रूप है बादलों से स्पर्श कर रहा है और चमक रहा है। हमने पहले भी देखा, भगवान ने बताया था, अर्जुन बता रहे थे कि ये रूप ऐसा लग रहा है जैसे हजारों सूरज एक साथ अगर उगेंगे तब आपका रूप जैसा दिखाई देगा। तो इतना बड़ा है विराट रूप कि बादलों के भी ऊपर जाके आकाश को स्पर्श कर रहा है। अनेक वर्ण, बहुत सारे अलग अलग रंग हैं उसके अंदर, वो सारे ज्योतिर्मान है, इतना ज़्यादा ज्योति आ रहा है। और आननम, भगवान के सारे मुंह खुले हुए हैं, और नेत्र बहुत बड़े हैं, विशाल नेत्रम, इतने बड़े नेत्र हैं कि ऐसा लग रहा है पूरे ब्रह्मांड में नेत्र खुले हुए हैं। और इसको देख के व्यथित हो रहे हैं सभी लोग, मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, मैं भी व्यथित हो रहा हूँ इसको देख के। मैं तो इसको देख के धैर्य भी धारण नहीं कर पा रहा हूँ, घबराहट के कारण मैं ज़्यादा धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरा मानसिक संतुलन भी नहीं स्थापित हो पा रहा है इस रूप को देखने के कारण। तो अर्जुन हम देख रहे हैं कि विराट रूप को देख के खुश नहीं हुए, अपितु डर गए। दैट मीन्स भगवान के जो भक्त हैं वो विराट रूप की पूजा नहीं करते हैं, वो विराट रूप को सम्मान कर सकते हैं, परंतु वो भगवान से पर्सनल व्यवहार रखना चाहते हैं। भक्ति जो है भगवान के द्विभुज रूप के साथ हो सकती है। सामान्यतः हम देखते हैं कि अगर हमारे सामने कोई चार भुजाओं का व्यक्ति आए तो हम डर जाएंगे, प्रेम करना तो दूर की बात है। तो भगवान का जो प्रेम है वो भगवान से पर्सनल डीलिंग्स में आता है, और पर्सनल डीलिंग तभी आती है जब भगवान अपने मनुष्य के रूप में आते हैं, मनुष्य के भुजाओं, दो भुजाओं के रूप में आते हैं। तो अर्जुन विराट रूप को देख के धैर्य को भी धारण नहीं कर पा रहे हैं, मानसिक संतुलन भी धारण नहीं कर पा रहे हैं, और उनका पूरा अंतरात्मा से व्यथित हो रहे हैं भय के कारण। और भगवान के जो मुख हैं प्रलय के समान अग्नि उसमें से निकल रही है, जैसे प्रलय के समय धरती के नीचे से शेषनाग के मुख से अग्नि निकलती है और पूरा ब्रह्मांड जल जाता है, खाक हो जाता है, उसी समय उसी तरह से अर्जुन देख रहे हैं कि आपके जो मुख हैं उसमें से वैसे ही अग्नि निकल रही है, और भगवान के दांत बहुत बड़े बड़े हैं, और साथ साथ उन दांतों में अर्जुन क्या देख रहे हैं कि भगवान के खुले हुए मुख में कौरव की सेना के और अर्जुन पांडवों की सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को, कुछ कुछ प्रमुख योद्धाओं को भगवान के मुंह के अंदर जाते देख रहे हैं। किस किस का नाम है? भीष्म, द्रोण, सूत, पुत्र, तथासु। भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये सब बड़े बड़े महारथी जो कौरवों की सेना के हैं, और पांडवों की सेना के भी कुछ कुछ महारथी, वो देख रहे हैं अर्जुन कि भगवान के मुख में जा रहे हैं, मुख में मतलब काल में जा रहे हैं, मरने जा रहे हैं, और उनमें से कुछ कुछ को भगवान के दांतों के नीचे चूर्णित होते हुए देख रहे हैं। भगवान का जो बड़ा मुख है उसके दांत इतने खतरनाक हैं कि ये सब उसके अंदर जा रहे हैं, वो मुख उनको खा के खत्म कर रहा है। ये किसका इंडिकेशन है? कि कौरवों की सेना में सब खत्म हो जाएंगे, भीष्म, द्रोण, सारे के सारे कौरव, 100 के 100 कौरव भाई, जितने भी उनके सहायक हैं, सब खत्म होने वाले हैं, इस सीन का ये मतलब है। और कर्ण भी मर जाएंगे, भीष्म भी मर जाएंगे, द्रोणाचार्य भी मर जाएंगे, अर्जुन की सेना के भी कुछ कुछ महान योद्धा मर जाएंगे, और ऐसा लग रहा है कि ये योद्धा आपके शरीर मुंह के अंदर इसी तरह से घुस रहे हैं जैसे बहुत सारी नदियां समुद्र में जाके मिलती हैं। इस तरह से ये योद्धा आपके मुंह के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और कैसे उपमा, क्या उपमा दे रहे हैं अर्जुन कि यदा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, जैसे जलती हुई अग्नि के अंदर पतंग, पतंग आप लोगों ने सुना भी होगा, पतंग एक कीट होता है जो कि जब अग्नि जलती रहती है उसे आकर्षित होकर उसकी तरफ भागता है और उसकी तरफ भाग के उसमें जल जाता है। ये एक तरीके का कीट कीट होता है जो कि अग्नि से प्रभावित होता है और अग्नि ही उसकी मौत का कारण होती है। तो मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए अग्नि में कूद जाते हैं। आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित होकर अपनी विकराल झुलसाती हुई किरणें प्रकट हो रहे हैं। तो अर्जुन अभी भयभीत होते जा रहे हैं और अगले श्लोक में अर्जुन पूछने वाले हैं कि हे भगवान, आख्या ही मुझे कृपा करके बताइए कि आप इतने उग्र रूप में हैं कौन, इतने गुस्से में आप क्यों हैं और इस उग्र रूप में आप कौन हैं और क्यों आप यहाँ पे आए हैं। आप आदि भगवान हैं, आप मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे प्रसन्न होइए और मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि आप क्यों आए हैं, आपका प्रयोजन क्या है यहाँ आने के लिए वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो कृपा करके आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं, इस उग्र रूप में यहाँ पे आप क्यों आए हैं। तो अभी भगवान ये फेमस श्लोक बोलते हैं। श्री भगवान उवाच, कालोस्मि लोक क्षय कृत्व वृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता विते पि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा सक्तुं भोक्ष्यं राज्यं समृद्धं मयैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन। ये दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कालोस्मि, मैं मृत्यु के रूप में आया हूँ, काल के रूप में आया हूँ, लोकक्षय कृत प्रबुद्ध, यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सबका विनाश करने के लिए मैं आया हूँ। और तुम्हारे और पांडवों के अलावा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मर जाएंगे। ये भगवान ने पहले ही बता दिया कि तुम बचोगे और तुम्हारे भाई बचेंगे, उसके अलावा दोनों पक्षों के सभी योद्धा खत्म हो जाएंगे। मैं उन्हीं को खत्म करने के लिए आया हूँ काल के रूप में। इसलिए अभी तुम्हें पता चल गया कि इस युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें यह युद्ध जीतना है, तुम्हें केवल मेरे इंस्ट्रूमेंट बन के कार्य करना है। बाकी ये चीज़ श्योर है कि सभी के सभी योद्धा मर जाएंगे, जो बड़े बड़े योद्धा तुम देख रहे हो वो योद्धा नहीं बचेंगे, वो मरने वाले हैं, और तुम्हें केवल मेरा इंस्ट्रूमेंट बनना है। सव्यसाचिन का मतलब जो युद्ध भूमि में बहुत शक्ति के साथ युद्ध करते हैं। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को सव्यसाची बोल रहे हैं कि आप युद्ध भूमि में बहुत कुशल तरीके से युद्ध करिए और मेरी जो इच्छा है उसमें आप इंस्ट्रूमेंट बनिए। इंस्ट्रूमेंट का मतलब भगवान की इच्छा को स्वयं करना, और जो क्रेडिट मिलता है तो वो इंस्ट्रूमेंट को नहीं मिलता है। जैसे डॉक्टर जिस चाकू से ऑपरेशन करता है चाकू का उपयोग करके, तो लोग आके चाकू को धन्यवाद नहीं बोलते हैं, डॉक्टर को धन्यवाद बोलते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि दूसरे की इच्छा में अपने आप को सहायक बनाना, अपना खुद का घमंड या अपना खुद का अहंकार उसमें नहीं होना। तो भगवान की सेवा में बहुत ज़रूरी है कि भगवान हमसे जो कराना चाहते हैं वो हमें अच्छे इंस्ट्रूमेंट के जैसा करना चाहिए, और इच्छा नहीं करनी चाहिए कि हमें क्रेडिट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वास्तविकता में भगवान को क्रेडिट मिलना चाहिए, हम उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारा शरीर मन बुद्धि सब कुछ भगवान दे रहे हैं, तो क्रेडिट जो है वो भी भगवान के पास जाना चाहिए। इसलिए अर्जुन को भगवान बता रहे हैं मयै वैते निहिता पूर्वमेव, तुम ये जान लो कि मेरे द्वारा ऑलरेडी ये सब मारे जा चुके हैं, जितने भी बड़े बड़े महारथी हैं ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अभी तुम्हें केवल इंस्ट्रूमेंट बनना है, निमित्त बनो जीत करने का। और द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, इसलिए तुम उनका वध करो और विचलित ना हो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। इस प्रकार से अर्जुन अर्जुन से भगवान बताते हैं। इसके बाद जो डायलॉग है वो संजय और धृतराष्ट्र के बीच में शिफ्ट हो जाता है। संजय धृतराष्ट्र से बता रहे हैं कि एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुन के जब भगवान केशव के ऐसे वचन सुने तो अर्जुन ने अपने हाथ जोड़े और भगवान को बार बार प्रणाम करके प्रसन्न मन से गदगद, गदगद का मतलब एग्जैक्टली प्रसन्न नहीं होता है, गदगद मतलब गले की ऐसी अवस्था कि जहाँ हम बोल नहीं पाए, गला अवरुद्ध हो जाता है। और साथ साथ अर्जुन उस रूप को देख के भयभीत भी हैं, भीत भीत है प्रणम्य, प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं और भयभीत होके हाथ जोड़ के भगवान से अर्जुन बता रहे हैं। अर्जुन उवाच, ये अर्जुन की प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि अर्जुन यूनिवर्सल फॉर्म विश्व रूप को देख के डर गए और अर्जुन को ऐसा लगा कि मैं तो कृष्ण को अपना मित्र समझता था, साथ वाला समझता था, पर ये तो बड़ा बड़े भगवान निकले। सामान्यता भी ऐसा आता है, अगर हम किसी को अपने बराबर वाला समझें और बाद में पता चले कि ये तो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है या कोई दूसरे देश का इतना बड़ा व्यक्ति है, तो हम डर जाते हैं कि अभी मैंने तो इसको समान जैसा माना था। तो अर्जुन को एक डर लगा कि कृष्ण परम पुरुष हैं और मैं उनको मित्र जैसा मानता था, उनका मजाक भी करता था। तो अर्जुन इसीलिए थोड़े से भयभीत होके भगवान की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है, सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं, सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, असुरगण आपसे भयभीत होते हैं। ये ठीक ही हुआ है, भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं कि आप क्योंकि ब्रह्मा हैं, आप संसार में सबसे बड़े हैं, ब्रह्मा शिव विविंचि नूतम, ये सभी आपको प्रणाम करते हैं। तो हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम आश्रय हैं, संसार को बनाने वाले हैं और भौतिक जगत के बाहर हैं। अक्षरम, अक्षरम शब्द का मतलब होता है क्षर, क्षर शब्द का मतलब है जो विनाश को प्राप्त होता है। तो अक्षर का मतलब होता है जिसका कभी विनाश नहीं होता है। अक्षरम त्वम अक्षरम सद असत तत्परम यत, आप अक्षरम हैं, अविनाशी हैं और भौतिक जगत के सारे कारणों से बाहर हैं, सभी से श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप भगवान हैं। आगे अर्जुन और भी प्रार्थना कर रहे हैं, ये अर्जुन की प्रार्थना याद करने लायक भी हैं। त्वम आदि देव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप आदि देव, संसार में सबसे पहले आप ही थे, आपके पहले कोई नहीं था, पुरुष पुराण सबसे पुराने पुरुष आप हैं। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, विश्व के आश्रय आप हैं। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, वेदों के द्वारा जानने योग्य आप हैं, आप संसार सभी जीवों के लक्ष्य हैं, आप ये पूरे अनंत रूप आपका है, ये पूरा जगत आपसे व्याप्त है। तो भगवान अभी आता भी है, एक श्लोक 13-14 अध्याय में आना चाहिए, ज्ञान ज्ञानम गेयम च केशव। तो ज्ञान क्या है, वो ज्ञान प्राप्त कर किसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ये अर्जुन प्रश्न करते हैं। तो भगवान उसका उत्तर इसमें विश्व रूप में दे रहे हैं, भगवान ही ज्ञाता हैं, भगवान ही ज्ञेय हैं, भगवान ही जानने योग्य हैं, जिसको जाना जाना चाहिए, भगवान ही सब कुछ जानने वाले भी हैं। और भगवान वायु हैं, अग्नि हैं, जल हैं, चंद्रमा हैं, प्रपितामह, पितामह मतलब ब्रह्मा, प्रपितामह मतलब पितामह के भी पिता, ब्रह्मा के पिता भगवान कृष्ण स्वयं हैं। तो अर्जुन उनको प्रपितामह बोल रहे हैं क्योंकि वो समझ गए कि ब्रह्मा जिस कमल पे बैठे थे, वो कमल जिस नाभि से निकला था, वो स्वयं भगवान कृष्ण थे। तो चूंकि वो भगवान ब्रह्मा के पिता हैं, इसलिए उनको प्रपितामह बोला गया है। और अर्जुन उनको हजार बार प्रणाम कर रहे हैं, अगले श्लोक में और प्रणाम करते हैं, बोलते हैं आपको आगे से प्रणाम है, पीछे से प्रणाम है, चारों ओर से प्रणाम है, आपको मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ। उसके बाद अर्जुन माफी मांगते हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासाधमसत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोथवाप्यच्युत तत्समक्षम तक्षामये त्वामहमप्रमेयम्। अर्जुन बता रहे, सखेति मत्वा, आपको कई बार मैंने अपना मित्र समझा, प्रसभम यदुक्तम, आपको जब मैं अपना मित्र समझता था तो कई बार आपको हठ पूर्वक मैंने हे कृष्ण बोला, हे यादव बोला, हे सखा बोला। क्योंकि अभी अर्जुन को पता चल गया है कि वो भगवान है, तो अभी उनको लग रहा है कि मैं तो इनको बराबर जैसा मानता था, इनको अलग अलग चीज़ें बोलता था। तो अर्जुन अभी माफ़ी मांग रहे हैं कि मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको कृष्ण बोला, सखा बोला, यादव बोला, तो कभी कभी, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, मैंने मूर्खता पूर्वक या प्रेम के बस जो भी किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। कई बार मैंने आराम करते समय, कई बार साथ में बैठे हुए, कई बार कुछ लोगों के सामने, कई बार अकेले आपका मजाक भी उड़ाया है, अपराध किया है, अनादर किया है, उस सब के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अर्जुन को अभी पता चल रहा है तो माफ़ी मांग रहे हैं कि क्योंकि दोस्तों के बीच में कई बार हंसी मजाक होता था तो अर्जुन कई बार भगवान का मजाक भी कर देते थे, तो वो सब अर्जुन को याद आ रहा है कि लोगों के सामने और अकेले में भी कई बार मैंने आपका अनादर किया है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप इतने बड़े, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, तो मेरे इन अपराधों को आप मना कर दी माफ़ कर दीजिए। इस प्रकार से अर्जुन माफ़ी मांगते हैं और फिर बताते हैं कि संसार में कोई आपके तुल्य नहीं है, कोई आपके समान नहीं है, कोई आपके ऊपर नहीं है, तीनों लोकों में आपसे बढ़कर भी कोई नहीं है। इस तरह से एक उपनिषद में भी लिखा हुआ है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समाप न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। भगवान इस संसार में भगवान को कोई काम करने के लिए नहीं है, क्योंकि भगवान सभी के जनक हैं और उनके समान या उनके अधिक भी इस संसार में कोई नहीं है। सारे जीवों के लिए आप पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिर कर आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आप मेरे पिता के समान हैं और जैसे कोई पिता अपने पुत्र की ढिठाई गलती को सहन कर लेता है, मित्र अपने मित्र की गलती को सहन कर लेता है, प्रिय अपनी प्रिया मतलब लवर अपने विलबिट की गलती को सहन कर लेता है, उसी प्रकार से आप मेरी गलतियों को माफ़ करें। इस प्रकार से अर्जुन पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो चुके हैं अभी। और भगवान इसके बाद बताते हैं कि हाँ, अर्जुन इसके बाद प्रार्थना कर रहे हैं 45 नंबर श्लोक में, अच्छा प्रार्थना है ये, कि पहले कभी ना देखे गए आपके इस रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ किंतु भयभीत भी हो रहा हूँ, इसलिए हे भगवान कृपा करिए और अपना पुरुषोत्तम रूप मुझे फिर से दिखाइए, पुरुषोत्तम भगवत रूप। तो इसमें हमने देखा कि अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त भी विराट रूप से आकर्षित तो हुए, सम्मान किए, परंतु भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त विराट रूप को से इतने आकर्षित नहीं होते। शुद्ध भक्त को भगवान का बांसुरी वाला रूप, द्विभुज रूप या नारायण रूप, दो भुजाओं या चार भुजाओं का रूप अच्छा लगता है, क्योंकि उसके साथ प्रेम का संबंध हो सकता है। विराट रूप के साथ प्रेम का संबंध कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हजारों मुख हैं, हजारों पेट हैं, हजारों हाथ हैं, तो ऐसे रूप के साथ संबंध होना बहुत मुश्किल है। इसलिए शुद्ध भक्त वो ऐसे रूप को पसंद करते हैं जिसमें वो अपने प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं, भगवान को अपना मित्र, अपना पिता, अपना सीनियर, अपना पति, अपने बेटे, इस तरह से मान सकते हैं और प्रेम का संबंध स्थापित कर सकते हैं, उसी रूप को भक्त पसंद करते हैं। इसलिए अर्जुन बता रहे हैं कि प्रसिद्ध देवेश जगन निवास, हे भगवान मुझे फिर से आपका पुरुषोत्तम रूप, पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप दिखाइए, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा लिए हों उसको देखना चाहता हूँ। तो अभी अर्जुन ने विराट रूप का दर्शन कर लिया, अभी अर्जुन की इच्छा है चतुर्भुज रूप का दर्शन करने की, उसके बाद फिर द्विभुज रूप का दर्शन करेंगे। तो भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, मैंने अभी तुम्हें अपनी माया प्रसन्न तवार्जुनेव रूपम परम दर्शितम आत्मयोगाद, अपनी आत्मशक्ति से मैंने तुम्हें इस विराट रूप का दर्शन कराया और ये विराट रूप तेजोमय है, संसार में सबसे ज़्यादा तेज है, अनंतमाद्यम, इस रूप को आज तक किसी ने देखा नहीं है, यन्मे त्वदन्येन न दृष्टिपूर्वम्, आज तक इतने बड़े रूप को, इस असीम और तेज वाले रूप को किसी ने नहीं देखा है। और भगवान इसके बाद बताते भी हैं कि इस रूप से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मेरा चतुर्भुज और द्विभुज रूप है, क्योंकि ये भौतिक रूप है और चतुर्भुज द्विभुज रूप जो है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप है। तो ये जो रूप जो है कृष्ण जो अर्जुन को दिखा रहे हैं, इस रूप को मानव कल्पना नहीं की जा सकती है, मानव कल्पना से परे है ये। जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उन्हें भी कृष्ण ने इसी रूप का दर्शन कराया था, परंतु दुर्भाग्य से दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और कृष्ण ने कुछ उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, परंतु वो रूप अर्जुन को जो रूप दिखाए उससे बहुत कम थे, इसलिए इस रूप को अर्जुन के पहले किसी ने नहीं देखा, भगवान ने इस रूप को अर्जुन के पहले और किसी को नहीं दिखाया था। और ये रूप भगवान बता रहे हैं कि वेद पाठ से, अध्ययन से, दान से, कार्य करने से, तपस्या करने से नहीं देखा जा सकता है, एवं सक एवं रूपः शक्य अहम् न लोके, इसको किसी ने नहीं देखा है इसके पहले, क्योंकि वेद अध्ययन यज्ञ दान तपस्या से इस रूप को नहीं देखा जा सकता है। जो वेदों या यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित विषयों का अध्ययन का निर्देश करते हैं, उनका मनुष्य अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र कुछ भी करे, परंतु केवल वो हमें गारंटी नहीं देता है कि हम इस रूप को देख पाएंगे। और फिर भगवान को समझ में आता है कि अर्जुन डर रहे हैं, तो फिर भगवान बताते हैं ठीक है, तुम्हारे चिंताओं से मुक्त करने के लिए तुम जो रूप देखना चाहते हो वो रूप मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस तरह से बोल के भगवान ने अपना वासुदेव का रूप दिखाया, चतुर्भुज रूप। स्वकम रूपम दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनम भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। चतुर्भुज रूप दिखाया, उसके बाद भगवान ने द्विभुज रूप का दर्शन किया, और द्विभुज रूप का जब भगवान ने दर्शन किया तो फिर अर्जुन को शांति मिली, अर्जुन धैर्य प्राप्त किए, क्योंकि अर्जुन का जो रूप, अर्जुन जिस रूप में भगवान को प्रेम करते हैं अपने मित्र के रूप में भगवान को प्रेम करते हैं, तो जब उन्होंने द्विभुज रूप देखा तो अर्जुन फिर शांति को प्राप्त होते हैं। और उसके बाद अर्जुन अगले 5 श्लोकों में प्रार्थना करते हैं, अर्जुन बताते हैं, भगवान बताते हैं, और फिर इस तरह से अध्याय एंड होता है। 51 श्लोक जो हम देखेंगे, अर्जुन बता रहे हैं, दृष्ट्वैव मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दुन। हे भगवान, आपका विराट रूप जो था इतना महान था परंतु भयभीत करने वाला था, परंतु आपका जो मानुष रूप है, मनुष्य के जैसा मतलब दो भुजाओं का जो रूप है, सौम्यम जनार्दुन, सौम्यम मतलब ये बहुत स्थिर चित्त वाला रूप है और इसको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी भगवान का जो मानुषी रूप है, जो कृष्ण का जो स्वयं का रूप है, जिस रूप में वो थे, उसके लिए भगवान बता रहे हैं कि ये रूप सबसे ज्यादा दुर्लभ है। इसके पहले विराट रूप के लिए भगवान ने बोला था कि ये दुर्लभ है, परंतु द्विभुज रूप के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं, सुदुर्दर्शमिदम, दुर्लभ से भी ज्यादा कठिन है, कि बहुत मुश्किल से ये रूप देखने मिलता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक स्वरूप है। इस रूप में भगवान आध्यात्मिक संसार में निवास करते हैं, तो भौतिक संसार में इस प्रकार का द्विभुज रूप दिख पाना बहुत कठिन होता है। केवल जब भगवान अवतार लेके आए तब भगवान इस रूप में इस संसार में आते हैं, नहीं तो आध्यात्मिक रूप इस संसार में नहीं देखा जा सकता है। केवल विग्रह के रूप में हम देख सकते हैं, परंतु जब भगवान स्वयं आते हैं तब ये रूप दर्शन होता है। भगवान बता रहे हैं कि ये रूप जो तुमने अभी देखा है ये सुदुर्दर्शमिदम, बहुत दुर्लभ रूप है, यहाँ तक कि देव अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। संसार के जो देवी देवता हैं वो भी इस रूप को देखने के लिए हमेशा इच्छित रहते हैं, क्योंकि जब भगवान अवतार लेते हैं तभी ये रूप दिखाई देता है, उसके अलावा ये रूप नहीं दिखाई देता है। तो भगवान बता रहे हैं कि देवी देवता भी इस रूप को देखना चाहते हैं। इस रूप को वेद तपस्या ज्ञान से नहीं देखा जा सकता है, केवल मेरी भक्ति के द्वारा देखा जा सकता है। 54वां श्लोक जो है, 54 श्लोक इम्पॉर्टेंट है ये। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधो जन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है, जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। केवल भक्ति के द्वारा भगवान बता रहे हैं कि इस रूप में द्विभुज रूप, मनुष्य के रूप में जो भगवान का कृष्ण का रूप है, केवल भक्ति के द्वारा देखा जा सकता है, और इसका साक्षात दर्शन भी भक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। और इस रूप का जो रहस्य है वो भी भगवान तभी बताते हैं जब कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है। दैट मीन्स अगर कोई अनन्य भक्त नहीं है तो भगवद गीता के रहस्य को समझना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। वो व्यक्ति भगवद गीता को कितना भी याद करे, कितना भी कोट करे, भगवद गीता पे प्रवचन दे, परंतु गीता को नहीं समझ सकता अगर वो अनन्य भक्त नहीं है। अगर वो भक्ति को प्राप्त नहीं किया तो गीता केवल उसके लिए एक रहस्य का विषय होती है। कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण बहुत महान व्यक्ति थे, कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण दानवीर थे, पर बहुत कम लोगों को पता है कि कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी हैं, क्योंकि अनन्य भक्ति के अलावा कृष्ण को समझ पाना मुश्किल है। तो कृष्ण को चतुर्भुज और द्विभुज रूप जो है वो विश्व रूप से अलग है। नारायण का चतुर्भुज रूप और कृष्ण का दो भुजाओं का रूप शाश्वत और दिव्य है, जबकि अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाया गया वो नश्वर रूप है, वो नष्ट हो जाता है। अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाया गया वो नश्वर रूप है, जबकि नारायण का रूप और कृष्ण का रूप है ये शाश्वत है, क्योंकि ये आध्यात्मिक रूप है। सुदूर दर्शन का अर्थ है कि देख पाने में कठिन, इसके पहले किसी ने इस विश्वरूप को नहीं देखा था। इससे यह भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो अर्जुन ने जब स्पेशल प्रार्थना किया थे तो अर्जुन को स्पेशल शोक दिखाया भगवान ने, नहीं तो सामान्यतः भक्तों को ये रूप भगवान नहीं दिखाते हैं, क्योंकि भक्तों को इस रूप को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद लास्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर होता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और प्रत्येक जीव से मैत्रीभाव करता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। क्या 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 क्वालिफिकेशन भगवान ने बताई यहाँ पे? मत कर्म कृन मत परमोह, मतलब जो सकाम कर्म मतलब कर्म, और मनोधर्म मतलब मानसिक कलमस से मुक्त हो जाता है, मत भक्ता मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। सकाम कर्म मतलब भौतिक भोग की इच्छा करने वाले कर्म, और मन के कलमस मतलब मन से हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि हम मन से ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ज़्यादातर पाप हम मन से करते हैं। तो सकाम कर्म मन के गंदगी से मुक्त होके मेरा भक्त बन के संग वर्जित है, संसार की भौतिक आसक्ति को छोड़ के मेरे लिए जो काम करता है, और साथ साथ निर्वैरा सर्वभूतेषु, संसार के कोई भी जीव से वो वैर नहीं रखता है, दुश्मनी नहीं रखता है, सभी जीवों का दोस्त होता है, मित्र होता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है तो वो मुझे निश्चय ही प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो कृष्ण से संबंधित नहीं हो। कृष्ण कर्म, कृष्ण कर्म का मतलब कर्म का जो फल है वो हमें कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। कितना भी कोई कर्म करे परंतु उसका फल हम अगर कृष्ण को समर्पित करते हैं तो उसको कृष्ण कर्म बोला जाता है। मत परमह का मतलब उस व्यक्ति जिसने अपने जीवन का लक्ष्य